प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन में अनवरत प्रवाहमान ज्ञान गंगा में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार मंथन चल रहा है। इस उपनिषद के संबंध में कुछ परिचय, इसका मंगलाचरण आदि पर हम लोगों ने विचार किया था। जैसा कि अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है, कारण कि अन्य उपनिषदों की बजाय यही एक ऐसी उपनिषद है जो वेद के संगीता भाग में आई है। अन्य उपनिषद वेद के ब्राह्मण भाग की उपनिषदें होती हैं, लेकिन यह संगीता भाग की उपनिषद है। डायरेक्ट शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, इसलिए बहुत महत्व का है। कई विद्वानों ने इस उपनिषद का संबंध भी कर्मकांड के साथ में जोड़ा, ऐसा कहीं पढ़ने को मिलता है। कारण कि 39वें अध्याय पर्यंत शुक्ल यजुर्वेद में ये कर्म शाखा की उपनिषद है, वो कर्मकांड का ही प्रसंग आ रहा था, उसको लेकर के इस प्रसंग को भी कर्मकांड के साथ में जोड़ देते हैं। किंतु आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज, जिनका प्राकटन ही वैदिक ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए हुआ, भगवान शंकराचार्य महाराज, देखो शंकर का अवतार माने जाते हैं ना, इतनी बड़ी भ्रांति संसार में होती है वेद को लेकर के, भगवान को भी इसके लिए दो दो रूप धारण करने पड़े। संसार के अन्य कोई सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो भगवान विष्णु विशेष अवतार लेकर के उस समस्या का समाधान करते हैं कि नहीं। भागवत में 24 अवतार का प्रसंग आया, तो 24 अवतारों में किसके अवतार माने गए? भगवान विष्णु के। और अवतार का प्रयोजन गीता में स्पष्ट लिखा ही है, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में जब भी आवश्यकता पड़ जाती है तो संत पुरुषों की सद्मार्गावलंबियों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए, पुनः धर्म स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु आते हैं। लेकिन जब इस संसार पर वैदिक ज्ञान का ह्रास होता है, वैदिक ज्ञान के स्वरूप की विलुप्ति होने लगती है, उस समय के लिए भगवान विष्णु ने कहां कहा कि मैं प्रकट होकर के वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित करता हूं? कहीं कहा? उन्होंने तो तीन काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, दुष्टों का श्रृंगार कर दूंगा, धर्म संस्थापना कर दूंगा, सज्जनों की रक्षा कर दूंगा, लेकिन वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए जो मुमुक्षु पुरुष हैं उनके लिए भगवान ने क्या किया? परित्राणाय साधु नाम तो हो गई बात, मगर वैदिक ज्ञान का जो स्वरूप बिगड़ चुका होता है उस समय के लिए फिर भगवान शंकर कहते हैं कि इतना काम मेरे पर छोड़ दो। वैदिक ज्ञान का स्वरूप जब बिगड़ता है तो मुझे उतार लेना पड़ेगा। इसलिए वैदिक ज्ञान का जब उल्टा सीधा अर्थ होने लगा तो भगवान शंकर ही आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए ना। इसीलिए तो हर दिन बोलते ही हैं शंकरम। शंकराचार्य कौन है? शंकर ही शंकराचार्य है। और केशवम बादरायणम, व्यास जी कौन है? तो केशव भगवान विष्णु ही है। दोनों ने मिलकर के वैदिक ज्ञान की रक्षा की, अकेले भगवान विष्णु के वश का खेल नहीं था। ये देख लो आप, इतने बड़ी भ्रांति फैल गई थी। सूत्र भाष्य कृतो वंदे, दोनों ने मिलकर के काम किया है। बादरायणी व्यास ने सूत्र निर्धारित किए, सूत्र बनाए, लेकिन समाज उसको समझ नहीं पा रहा है, उसका भी उल्टा सीधा जब अर्थ करने लगता है। वेद का तात्पर्य भगवान विष्णु ने किया भी तो लोग समझ न पाए, तो भाष्य कर दो। भगवान ने फिर भाष्य किया उस पर, और उस भाष्य के आधार पर ही आज हम लोग इस मंच के द्वारा चिंतन करते हैं। ये वो अध्यात्म केंद्र है जहां परंपरा से जो हमारा वैदिक ज्ञान चला आ रहा है उसका यथार्थ उद्घाटन इस मंच के द्वारा होता है। आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज ने जब इस उपनिषद के ऊपर भाष्य प्रारंभ किया है, वहां सबसे पहले इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के संगीता भाग की उपनिषद है, लेकिन इसको कर्मकांड का अंग नहीं समझना चाहिए। ये उपनिषद केवल ज्ञानकांड को बताने के लिए है। यद्यपि इसमें दो विभाग हैं, दो विभाग स्वतंत्र हैं, कर्म विभाग और ज्ञान विभाग। 18 जो इसमें कुल मंत्र आएंगे, उस 18 मंत्रों में केवल 7 मंत्र ही ज्ञानकांड के आएंगे, बाकी कर्मकांड परक हैं। कुछ लोग इन 7 मंत्रों को कर्मकांड के साथ में जोड़ देते हैं, और उन 18 मंत्रों में 7 और 11 का विभाग है। उसमें भी प्रथम 2 जो मंत्र आए हैं, पहला मंत्र ज्ञानपरक मंत्र है, और दूसरा जो मंत्र आएगा पूर्वन्येवेह कर्माणि, ये जो मंत्र आएगा ये कर्म विभाग को, उपासना विभाग को स्पष्ट करने के लिए आएगा। इस प्रकार से 2 जो मंत्र आएंगे, प्रथम और द्वितीय मंत्र, शेष 16 मंत्रों में इन्हीं का विस्तार देखने को आपको मिलेगा। बहुत सुंदर उपनिषद है, जैसा कि आप सुन रहे थे, इसका नाम ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद चूंकि इसका शुभारंभ ही इसी शब्द के द्वारा हो रहा है, और इतना सुंदर इसका मंत्र का अर्थ है, आओ जितना संभव है उतना करेंगे, बाकी गाड़ी चलती रहेगी, उच्चारण कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैदिक वाणी का उच्चारण करने से भी हमारी वाणी और हमारा मन पवित्र होता है, निर्मल हो जाता है, इसलिए एक बार उच्चारण कर लें। मंत्र इतना प्रसिद्ध है कि बिना पढ़े सुन करके भी आप सहज उच्चारण कर पाएंगे। बस इतनी सी प्रार्थना है कि एक साथ करना, लगे कि कोई बहुत अच्छे सत्संगी उच्चारण कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रख करके। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम्, यत्किंच जगत्याम जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा, मा गृध कस्य स्विद्धनाम्, मा गृध कस्य स्विद्धनाम्। बहुत अच्छा मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम शब्द का अर्थ होता है जिसको हमारी इंद्रियां ग्रहण कर पा रही है, जो दृष्टिगत पदार्थ प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम संसार में जो भी दिखाई पड़ रहा है, कुछ इंद्रियों का जो भी विषय है, उन सबको इदम शब्द से बोलते हैं। सर्वनाम पद है, इदम का अर्थ होता है यह है, यह कौन है? जिस पर आपकी दृष्टि जा रही है वही, यह है जिस जिसको भी आप देख रहे हैं। इदम सर्वम लगा दिया है, यह भी सर्वनाम शब्द है। सर्वम का मतलब सब कुछ जो हमारी इंद्रियों का विषय है। इदम सर्वम ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर लेने योग्य है। जिसको भी आप देख रहे हो वो सबको ईश्वर से आच्छादित कर देना चाहिए। कौन कौन है जिसको ईश्वर से आच्छादित करना है? यत किंच जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, इस जगते में, इस गतिशील संसार में जो भी गतिशील प्राणी पदार्थ हैं, चाहे स्थानतः गतिशील हैं और चाहे कालतः गतिशील है, दोनों प्रकार की गति होती है। एक स्थान से गति होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सब अपने अपने घर में थे और वहां से गति करके अध्यात्म विद्या भवन में आ गए, थोड़ी देर में फिर वापस गति कर जाएंगे, वह है स्थानतः गति। और दूसरी गति है बाल्यकाल से लेकर के और आज जिस स्थिति में पहुंच गए हैं वो कालतः गति है, भीतर से चल रहा है। तो संसार की हर वस्तु व्यक्ति को आप देखिए सब गतिशील है कि नहीं, इसलिए संसार को संसार शब्द दिया जाता है या इसको जगत शब्द दिया जाता है। दोनों ही शब्दों का अर्थ ही यही होता है, संसरति इति संसार, गच्छति इति जगत, जो गति कर रहा है, जो चल रहा है उसको जगत बोलते हैं। और कैसे चल रहा है, सर 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 करके चल रहा है, संसरण कर रहा, जैसे सांप चलता, कल बता रहे थे आपको, सांप की गति से संसरण करता हुआ, अरे बिना हाथ पैर के ही दौड़ रहा है, सर्प के न हाथ होता है न पैर होता है और फिर भी दौड़ता है कि नहीं टेढ़ी टेढ़ी गति से, ये सारा का सारा संसार बिना हाथ पैर दौड़ रहा है, ऐसे ही गति चल रही है सबके अंदर, भीतर से तो चल ही रहा है। भाई इस गति के लिए हाथ पैर की आवश्यकता भी पड़ जाए, लेकिन भीतर की जो काल गति चल रही है उसमें क्या है, ऐसे सर्प की तरह चल रहा है। तो जो कुछ भी अस्थावर जंगम पदार्थ है संसार के अंदर, वो सब का सब जिसको देख रहे हैं एकमात्र ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर देने चाहिए। तेन तेन भुंजिता, इस प्रकार उसके त्याग के द्वारा ही देखने वाले को क्या करना चाहिए, भुंजिता रक्षा कर लेनी चाहिए। किसकी रक्षा कर लेनी चाहिए, अभी ध्यान दीजिए, मैं आपको सिर्फ मूल मंत्र बता रहा हूं, इसकी व्याख्या में टाइम लगेगा। तेन तेन भुंजिता माघृत कस्य स्विधनम, इसलिए उस त्याग के द्वारा ही पालन करो, रक्षा करो, किसकी करो, अपने आप की रक्षा करो। माघृत है, तृष्णा में मत पड़ो, लालच में मत पड़ो, गृधा मत करो। कस्य स्विधनम, स्वित भला, धनम कस्य, धन किसका है, धन उपलक्षित जिसको भी हम पकड़ करके रखना चाहते हैं। संसार की एक भी वस्तु और व्यक्ति एक रूप में किसी के सामने आज तक रहे नहीं, रह सकते नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है कि वह समान रूप से रह जाएं। तो जो चीज प्रतिपल बदल रही है वो भला हमारी कैसे हो सकती है। कस्य स्विधनम, धन उपलक्षित जो भी पदार्थ है वो भला है किसका, वो किसी का नहीं है, अमृत तृष्णा है। इस प्रकार से जो मूल मंत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा क्रमशः एक एक पद पर हम लोग विचार करेंगे, बहुत सुंदर मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब का सब ईश्वर से आच्छादित कर देने योग्य है। पहली चीज ईश्वर क्या है और ये आच्छादन क्या है, उससे सबको आच्छादन ढक देना चाहिए। आच्छादन कर देने का अर्थ है आवृत कर देना, ढक देना, सारे के सारे संसार को ईश्वर ओढ़ा दो। जैसे किसी शरीर को चद्र ओढ़ाई जाती है, ऐसे जगत को ईश्वर ओढ़ा दो, ईश्वर से आवृत कर दो। ऐसा ढकना है तो फिर आच्छादित करना कैसा होगा। ईश्वर कोई साकार वस्तु हो, एक वस्त्र की तरह हो, तो उसको आवृत किया जा सकता है। एक पुस्तक है और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, अब पुस्तक एक कपड़े से आवृत है, आच्छादित हो गई ना, वो दिखाई नहीं पड़ रही, अब आपको सिर्फ कपड़ा दिख रहा है। तो इस कपड़े की तरह एक आकारवान वस्तु तो हम ईश्वर को नहीं कह सकते, और यदि कपड़े की तरह आकारवान ईश्वर होता तो जो भी आकारवान होगा उसमें तो कई सारे दोष आ जाएंगे। पहला दोष तो उसमें आएगा परिच्छिन्नता का दोष, जो साकार वस्तु होगी वो व्यापक नहीं हो सकती, वो सर्वत्र नहीं हो सकती है। दूसरा दोष आ जाएगा, जो वस्तु व्यापक नहीं हो सकती, जो परिच्छिन्न है, एक थोड़े दायरे में रहने वाली होगी, तो दूसरा दोष उसमें आएगा कि वो नाशवान होगी, वो खुद ही नाशवान होगी। तो जिस दिन वो वस्तु जिससे आवृत किया जा रहा वही नष्ट हो जाएगी, तो फिर किससे ढकोगे उसको आप। तीसरा दोष यह होगा कि जितने भी परिच्छिन्न वस्तु होती है वो जन्य होती है, उसका जन्म होता है, और जिसको ईश्वर बोलते हैं उस ईश्वर का न तो जन्म है न ईश्वर परिच्छिन्न है, क्योंकि जन्म होता तो परिच्छिन्न होता और ईश्वर तो व्यापक तत्व है। तब ऐसी स्थिति में उस निराकार व्यापक ईश्वर के द्वारा जगत को कैसे ढके, उसकी दृष्टि तो एक अलग दृष्टि लेनी पड़ेगी। इसके आच्छादित करने का अर्थ है, जैसे नाक कान गला हाथ पैर आदि के लिए जितना भी आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण में जो स्वर्ण काम आता है, कोई कहे कि जितना भी आभूषण तुम्हारे पास में है ऐसा करो कि उसको आप सारे के सारे आभूषणों को स्वर्ण से आच्छादित कर दो, कैसे करोगे? जितना भी आभूषण है उसको स्वर्ण से आच्छादित कर दो, सोने से उसको ढक दो। अब आभूषणों को सोने से ढकने के लिए क्या स्वर्ण का दूसरा पतरा बनाना पड़ेगा जिससे उसको ढका जाए? सारे के सारे आभूषणों को यदि स्वर्ण से ढकना है तो केवल दृष्टि में परिवर्तन करना है। जब तक उन आभूषणों को आभूषण की दृष्टि से देखेंगे कि यह हार है, कि यह कुंडल है, कि यह कंगन है, तो हार कुंडल कंगन आदि की दृष्टि से देखेंगे तो आपकी दृष्टि स्वर्ण पर नहीं है, कहां है? उसकी आकृति के ऊपर है। लेकिन मान लीजिए उस आभूषण को आप विक्रय करने जा रहे हैं अथवा आप आभूषण क्रय करने जा रहे हैं, उस समय जब आप खरीदने या बेचते समय देखते हैं तब उस आभूषण की आकृति को देख करके ये सौदाबाजी होती है या उसकी जो क्वालिटी होती है उसको देख करके सौदाबाजी होती है? तो जिस वक्त उस आभूषण के क्रय विक्रय के समय जो हमारी दृष्टि होती है कि यह स्वर्ण है, असली है कि नकली है, यह चीज खास करके देखी जाती है, तो जितने सारे सामने डाले गए आभूषण होंगे उन सब में आप बार बार एक ही चीज ढूंढोगे कि इसका जो मटेरियल है वो असली है कि नकली है। वहां स्वर्ण को ही देख रहे हैं, आभूषण की आकृति गौण है, पहली चीज उसके क्वालिटी को देखा जाता है। तो जिस प्रकार से आभूषण को स्वर्ण की भावना से, भावना भी नहीं है, हकीकत यह है कि वो यथार्थ दृष्टि है। भावना में तो एक मान्यता हो जाती है, जैसे एक पत्थर को, गोलमटोल पत्थर है, उसको शिवजी की भावना से देख लिया, एक गंडकी नदी से निकाला हुआ पत्थर है उसको शालिग्राम की दृष्टि से देख लिया, एक कागज के ऊपर बना हुआ चित्र है उसको आप गुरु की तस्वीर या लक्ष्मी जी की तस्वीर करके देख लिया है, एक मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति को आपने गणपति की दृष्टि से देख लिया, वहां तो भावना है, उसमें भावना करो कि ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये गुरु जी हैं, ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं। ऐसे यहां पर भावना की बात नहीं बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई खोट है, धातु सही नहीं है, और यदि दुकानदार कहे कि आप पहले ये मान लीजिए कि ये सोना है, तो आके आप मान लेंगे? भाई सवाल ही नहीं है, मान कैसे लेंगे? हम पहले जानेंगे और जान करके फिर व्यवहार करेंगे। यहां भगवती श्रुति इस मंत्र में मानने के लिए नहीं कह रही है कि ऐसा मान लो कि सारा का सारा संसार में ईश्वर है, ऐसा नहीं है। ईश्वर दृष्टि से आच्छादित करने का अर्थ है, जैसे स्वर्ण को की दृष्टि से हमने आभूषणों को आच्छादित किया है, ऐसे ही ईश्वर की दृष्टि से सारे जगत को आच्छादित कर देना चाहिए। ये बात इस मंत्र में कही जा रही है। केवल अपनी दृष्टि में परिवर्तन की जरूरत है। दिखाई तो वही पड़ेगा संसार जैसा दिख रहा है, लेकिन यथार्थ दृष्टि होते ही बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मैंने इस मंच से कई बार दिया होगा आपको, कि मान लीजिए आप कहीं साड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं और साड़ी खरीदने के लिए कहीं शोरूम में गए। एक बार आप पूरे शोरूम में अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे ना, साड़ी खरीदनी है, देखते हैं कि कौन सी साड़ी ली जाए, किसका कलर डिजाइन अच्छी है। बहुत सारी हजारों साड़ियों में से एक डिजाइन आपको अच्छी लगी और उसके बाद में आप कहते हैं कि भैया वो साड़ी उतारो, वो कोने वाली राइट हैंड की तरफ जो साड़ी है वो उतारो। अब वो साड़ी उतरवाने के बाद व्यापारी ने आपके सामने डाल दी, टेबल पर ला करके रखी, आप फिर क्या करोगे जब साड़ी पास में आ गई। एक बार तो साड़ी को आपने इतनी दूरी से ही पसंद कर लिया ना, हजारों साड़ियों में से उस साड़ी का चयन इतनी दूरी से ही हो गया है कि ये साड़ी बहुत अच्छी है, मेरे लायक है, जिसको मैं लाइक करती हूं वो चीज लग रही है। परंतु जब उस साड़ी को व्यापारी आपके सामने लाकर के डाल देता है, तब फिर आप क्या करोगे, उस साड़ी का कोई पल्ला कोई कोना लेकर के फिर उसको ऐसे ऐसे देखोगे, करोगे कि नहीं, बजा बजा करके देखेंगे, फिर क्या देख रहे हैं। आपने उसको पसंद तो तभी कर लिया जब हजारों साड़ियों के बीच में से उसको चयन किया, तो नजदीक से क्या देख रहे हैं, दो दृष्टि है। उतने दूर से जब आपने पसंद किया तो उस साड़ी का कलर पसंद किया है, डाली गई डिजाइन पसंद किया है, लेकिन जब नजदीक में आ गई तो अब उस साड़ी की क्वालिटी को देख रहे हैं, कॉटन है, पॉलिस्टर है, मजबूत है, कमजोर है, कैसी है, उसको नजदीक से देखा जा रहा है। तो जैसे साड़ी को हम पसंद करते हैं, ठीक इसी प्रकार से संसार को देखने की जरूरत है। जब दूर दूर से जगत को देखते हैं तो उस साड़ी की तरह ही दिखाई पड़ेगा। ये संसार में कितने डिजाइन है, कितनी आकृतियां हैं, आप गिन सकते हैं भाई है? कितने व्यक्तियों से आपने प्रेम किया और कितने व्यक्तियों से आपने नफरत की है, कितनी वस्तुओं को आपने पसंद किया, कितने को नकार दिया है, किसी को घर में लाए हैं, किसी को घर से बाहर कचरे में डाला है। हर चीज को जो देख रहे हैं हम, दूर से ही तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसके उपयोगिता अनुपयोगिता, उसका रूप, उसकी आकृति, वो सब देखते हैं, लेकिन उसकी असलियत को कौन देख रहा है। दूर दूर से सारा संसार इसी प्रकार से दिखाई पड़ता है, और यही कारण है कि जब तक ये दूर से देखने की दृष्टि होगी तो इसी उपनिषद में आएगा कि हमारे भीतर की जो जुगुप्सा है वो समाप्त हो ही नहीं सकती। एक दूसरे के प्रति प्यार और घृणा का जो भाव पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति राग और द्वेष की जो भावना पैदा होती है, वो मिट नहीं सकती है। जब तक इस संसार को हम दूर दूर से उसे साड़ी की तरह देखेंगे, तो इस संसार में आपका कोई प्रिय भी होगा, कोई आपका अप्रिय भी होगा। लेकिन जब वो दृष्टि आ जाएगी कि साड़ी को नजदीक लेकर के हम देख रहे हैं, ऐसे पूरे संसार को बहुत नजदीक से देखोगे कि आखिर इस संसार की क्वालिटी क्या है, इसका मूल स्वरूप क्या है, इस दृष्टि से देखने लगेंगे तो आपको एक ईश्वर के सिवाय दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक ही ईश्वर है, जैसे कल सुन रहे थे, एक ही भगवान श्री कृष्ण, चाहे बछड़े के रूप में हो और चाहे ग्वाल बाल के रूप में हो, चाहे ग्वाल बालों की लट्ठियां हो, चाहे उनके भोजन के टिफिन हो, जड़ और चेतन सारे के सारे कौन बन गए, वही दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार से जब क्वालिटी की दृष्टि से देखते हैं, उस कारण की दृष्टि से देखते हैं, तो ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ेगा। ये तो वायमानी भूतानी जायन्ते एन जातानी जीवंती यत प्रेत्या भी संभिशंती तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है ये। इस प्रकार से उस ईश्वर के द्वारा सबको आच्छादित करना चाहिए। दूसरी दृष्टि आपको बताते हैं, ईशावास्य में जो ईशा शब्द है, यहां तृतीय विभक्ति है, ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर देना चाहिए। मूल शब्द है यहां पर ईश शब्द, ईश ईश ईश्वर ईशान, ये सारे के सारे शब्द समानार्थक होते हैं। इसलिए शिवजी का एक नाम है ईशान, ईश्वर, ईश और ईश, ये सारे शब्द ईश्वर के लिए आते हैं। ईश्वर शब्द का सीधा सीधा महापुरुषों ने अर्थ किया है कि जो कुछ है सब उसी का खेल चल रहा है, उसी से उत्पन्न होना, उसी से संचालित होना। महापुरुषों ने इसके ईश्वर शब्द की व्याख्या लिखी है ना, बहुत प्रसिद्ध है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। ईश्वर किसको कहते हैं? जो करने में समर्थ हो, नहीं करने में समर्थ हो, और जो हो रहा उसको उल्टा सीधा करने में समर्थ हो, कुछ का कुछ कर दे, कुछ का कुछ बदल दे, ये ईश्वर की महिमा होती है। कर्तुम समर्थ, सा करने में समर्थ है। अब बताइए, किसी एक जीव की सामर्थ्य है कि वो आकाश बना देता? किसी जीव की सामर्थ्य है कि वो वायु का निर्माण कर देता? किसी जीव की क्या सामर्थ्य है कि अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे तत्वों का निर्माण कर देता? कोई एक जीव नहीं बना सकता है। किसकी ताकत थी? कोई किसी जीव की ताकत है कि सूर्य को अपनी तरफ से गति देता, चंद्रमा को गति देता? किसकी ताकत है कि ऋतु परिवर्तन कर देता? ये उत्तरायण और दक्षिणायन की जो गति प्राप्त हो रही है, ये गति कौन सी सरकार करती है? चाइनीज करती है कि अमेरिकन सरकार करती है? सूर्य को 6 महीने उत्तरायण में और 6 महीने को दक्षिणायन में ले जाना, ये किसका काम है? कर्तुम समर्थ है। जिसको कोई इंसान नहीं कर सकता है, वो करने में जो समर्थ होता है। हकीकत है कि करने का जो सामर्थ्य है वो कुल ईश्वर का ही है। ये जीव तो मात्र मात्र अभिमान करने में स्वतंत्र है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीव करता है। दो प्रकार की सृष्टि का भी पंचदशीकार ने भी वर्णन किया है। दो तरह की सृष्टि आती है, एक ईश्वर सृष्टि और दूसरी जीव सृष्टि। जिस जगह हम लोग बैठे हैं ये किसकी सृष्टि है? ईश्वर की सृष्टि है कि जीव की सृष्टि है? जिस भवन में बैठे हुए हैं, जिस चेयर पर बैठे हुए हैं, जिस एयर कंडीशनर सुविधा में बैठे हुए हैं, जीव की सृष्टि है? अच्छा, जीव की सृष्टि है। ये पूरा भवन जीव ने बनाया, चेयर से जीव ने बनाया, ऐसी जीव ने लगाए, सारी व्यवस्थाएं जीव ने की। पर जिस जीव ने किया है, ये कोई बुद्धिमान जीव का खेल है कि किसी बुद्धू जीव का खेल है? बुद्धिमान का ही तो है, उसी की क्रीड़ा है। अब जिस बुद्धिमान इंसान ने ये सारी कल्पना करके और इतना सुंदर एक व्यवस्था दी है, अब बताइए उस बुद्धिमान के भीतर जो एक पुर्जा है, एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर सेट हो गया बुद्धि, एक सॉफ्टवेयर समझ लो बहुत बड़ा, तो ये जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, ये कौन से जीव ने डाला था भाई? तो जो बुद्धि रूपी सॉफ्टवेयर डाला है इसके भीतर में, वो तो उसी ईश्वर की ही देन है। और उसी ईश्वर की देन बुद्धि के द्वारा और ये सारा खेल कर दिया, तो जीव ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? ये तो ईश्वर का ही दिया हुआ, उसी के द्वारा तो कर रहा है। तो मूल स्वरूप में जाकर के देखते हैं तो जीव का अपना कुछ भी नहीं है, वो सब की सब रचना ईश्वर के द्वारा ही है। मनुष्य के शरीर को मनुष्य ने नहीं बनाया, मनुष्य की बुद्धि को मनुष्य ने नहीं बनाया, मनुष्य में जितने भी शारीरिक आदि शक्तियां हैं उसको मनुष्य ने नहीं बनाया, कुछ कर पाने का संयोग है उसको मनुष्य ने नहीं बनाया। ये सारे के सारे संयोग देने वाली जो दिव्य सत्ता है वो तो ईश्वर ही है, परंतु फिर भी व्यक्ति उस दिव्य चैतन्य ईश्वरीय सत्ता को भूल करके क्या बोलता है? मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, कुछ नहीं था, मैं कहां से कहां पहुंच गया, तूने क्या किया है? वो नरसिंह मेहता बोलते थे, हूं करो हूं एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम स्वानताड़े, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। कितना बड़ा अज्ञान है, कितनी बड़ी भूल है। बैलगाड़ी के नीचे छाया छाया में चलने वाला कुत्ता, जिस बैलगाड़ी की छाया में चल रहा वो अपने को बचा करके चल रहा है, और वो ये अभिमान करने लग जाए कि इस गाड़ी को मैं अपनी पीठ पर ढो करके चल रहा हूं, अरे तू इसकी छाया में चल रहा, तेरी क्या औकात है जो बैलगाड़ी को ढोकर के चले। इसी प्रकार से जीव अभिमान करता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये करता हूं, क्या औकात है। अरे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा जाए तो एक मिनट में व्यक्ति पराधीन हो जाता है, उसी ईश्वर को भूल जाता है, या फिर भूलता नहीं तो फिर घबरा करके ईश्वर को याद करता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसको पहले ही याद रख लिया होता तो कितना अच्छा होता भाई, मजबूरी में याद कर रहा है। शायद मैं समझता हूं कि भगवान भी यही सोच करके झटके लेता है, बीच बीच में ऐसे झटके लगाता है तो सोच समझ ले तेरी औकात क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या, कितनी शक्ति है तेरी। भगवान कहते हैं जो कुछ हो रहा है, मैव निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, केवल तुझे तो निमित्त बनना होता है, जो हो रहा हो तो मेरे ही संकल्प से हो रहा है। इसलिए संसार की जितनी भी एक बड़ी समष्टि व्यष्टि व्यवस्थाएं चल रही है, वो सारी की सारी व्यवस्थाओं को एक संचालित करने वाली जो सत्ता है, कर्तुम समर्थ है, ईश्वर है, करने में जो समर्थ है वही ईश्वर है, उसी का नाम ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वर है, और जिसको ईश्वर नहीं करना चाहता, आप लाख लाख उपाय कर लीजिए, ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो कभी संभव नहीं है। जो कुछ होता है ईश्वर के संकल्प से ही होता है। एक सज्जन ने साधना सदन में गुरुदेव जी से, महाराज श्री जी से पूछा कि महाराज जी आप कहते हैं कि ईश्वर के संकल्प में जो होता वही होता है, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, उसमें भी तो सफल होते ही हैं। सारे के सारे जीव अपनी प्लानिंग में विफल थोड़ी हो जाते हैं। किसी किसी की प्लानिंग सिस्टमेटिक न हो तो हो सकता है उसको सफलता न भी मिले, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग लेकर के व्यक्ति चलता है, अमुक बिजनेस करना है, अमुक सर्विस करनी है, अमुक पढ़ाई करनी है, अमुक कार्य करना है, तो उसमें उसको सफलता भी तो मिलती है। तो इंसान जो सोचता वो भी तो होता ही है। महाराज श्री जी ने कहा कि इंसान सोचता है वो नहीं होता है, बात यह होती है कि जो इंसान कर रहा वही ईश्वर ने सोच करके रखा है, लेकिन ईश्वर के संकल्प के साथ में जब करने वाला अभिमानी उस जीव का भी संकल्प मिल जाता है तो दोनों एक मत हो गए, विमत तो हुआ ही नहीं। ईश्वर का भी यही मत था कि यह काम ऐसा होना चाहिए और जीव का भी संकल्प उसी के अनुसार हुआ। तो जब जीव ईश्वर के संकल्प के अनुसार ही अपना संकल्प कर लेगा, उसको अपना संकल्प मानने की बजाय भगवान का ही संकल्प मान करके कार्य को आरंभ करता है, ईश्वर का ही दिया हुआ विचार समझ करके उसको आरंभ करता है, तो उसमें सफलता ईश्वर के संकल्प में है तो होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर को मंजूर नहीं है और आप जबरदस्ती अपना संकल्प सिद्ध करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिल जाए। तो जहां ईश्वर के संकल्प के साथ में जीव का संकल्प न मिले, वहां पर दो मत हो जाएंगे, ईश्वर कहता है कि नहीं होगा और जीव कहता कि होना चाहिए। अब जीत किसकी होगी आप सोचते रहना, देख लीजिए किसकी जीत होगी, ईश्वर की ही जीत होनी, क्योंकि कर्तुम अनकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ तो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान तो ईश्वर है, सर्वज्ञ तो ईश्वर है, किस दृष्टि से आपको सफलता देगा वो भी ईश्वर जानता है, हर जीव के कल्याण की भावना से ईश्वर सोचता है। इसलिए ईश्वर वही है जो करने में समर्थ है, नहीं करने में भी समर्थ है, उसे जबरदस्ती कोई करवा नहीं सकता। घड़ी इनकार कर रही है, अभी आपको एक भजन सुनना है, इसलिए इस प्रसंग को बहुत सुंदर है, ईश्वर क्या चीज है इसको हम लोग कल और आगे बढ़ाएंगे। ओम।